न्यायियों अध्याय दो, अध्याय दो में हम पढ़ते हैं, और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकिम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनकी देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इसराइलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकिम रखा, अर्थात रोने वाले, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। न्यायियों दूसरा अध्याय 1-5। स्वर्गदूत ने कहा कि उन्होंने वाचा तोड़ दी है। परमेश्वर की तो प्रतिज्ञा थी कि वो अपनी वाचा नहीं तोड़ेगा। मनुष्य कभी नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने वाचा तोड़ी, कभी नहीं। परमेश्वर की वाचा तोड़ने का दोषी मनुष्य ही है, वो ही अपने अनुबंध को तोड़ता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुमने परमेश्वर की वाचा तोड़ी है, तुम लोगों ने यहां के निवासियों के साथ समझौता कर लिया, तुमने इनकी वेदियों और मूर्तियां नाश नहीं की, इसलिए अब वे तुम्हारे लिए फंदा और जाल बन जाएंगे। उन्होंने पश्चाताप तो किया और बलि भी चढ़ाई, परंतु वे बदले नहीं। आज भी मनुष्य रोता है, विलाप करता है, क्षमा मांगता है, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, परंतु वो बदलता नहीं। ऐसे पश्चाताप का मूल्य नहीं होता है। विलाप और सच्चे पश्चाताप में महान अंतर होता है। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, परंतु उनके मन में पश्चाताप नहीं। जेल में लोगों का पछतावा उनका अपराध नहीं, उनका पकड़ा जाना होता है कि वे वहां हैं, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते कि उन्हें आगे से अपराध नहीं करना है। मेरे विचार में ऐसा शायद ही कोई अपराधी है जिससे अपने अपराध पर पश्चाताप हो। वो पछताता इसलिए है कि शायद उससे ऐसी कोई चूक हो गई है जिसके कारण वो पकड़ा गया। बाहर निकलते ही वो फिर से अपराध करने लगता है। उन्होंने अपने कर्मों पर दुख प्रकट किया, और देखने वाला सोचेगा कि अब वे जाकर समस्त बैरियों को नाश कर देंगे। नहीं, ये मात्र एक भावनात्मक प्रदर्शन था। वे ना तो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और ना ही अपने बैरियों का नाश करेंगे, वे उसी राह पर चलते रहेंगे। इसी प्रकार धार्मिकता और भक्ति है जिसमें मन परिवर्तन नहीं है। आज भी मनुष्य की दशा यही है। इसराइल के पूरे इतिहास में देखने को मिलता है कि वही लोग जिन्हें उन्होंने नाश नहीं किया था उनके लिए फंदा बन गए थे। उस देश के देवी देवताओं की मूर्ति पूजा उनके लिए एक समस्या बन गई। वे सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर उनकी पूजा करने लगे थे। यरमिया पुकार कर कहता है, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि मनुष्य अपने परमेश्वर से दूर हो, चाहे वे वास्तव में परमेश्वर ना हो, और किसी और परमेश्वर की उपासना करें? परमेश्वर दुखी होकर कहता है, मेरे लोगों ने मुझे त्याग दिया जो जीवन का जल का सोता है, और अपने लिए जल कुंड बनाए, वो भी ऐसे जिनमें पानी न रुके। ये उनके पूर्वजों की भूल का परिणाम था। यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर वहां के मूल निवासियों और उनके देवी देवताओं का नाश कर दिया होता तो वो असीम कष्ट और विपदाएं उनके वंशजों पर ना पड़ते। और यहोशू के जीवन भर और धर्म वृद्धों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इसराइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष उसको तिम्नथेरेस में जो एप्रेम की पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर उसी के भाग में मिट्टी दी गई और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। यहोशू के बाद की पीढ़ी। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था, इसलिए इसराइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की पूजा करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। न्यायियों 2:7-13। ये बड़ी ही विनाशकारी बात थी कि पितरों ने अपनी संतानों को परमेश्वर के सामर्थ और कामों के बारे में बताए बिना मर गए। अतः दूसरी पीढ़ी यहोवा को और उसके द्वारा उनके पितरों के लिए किए गए परमेश्वर के सामर्थी कामों को नहीं जानती थी। फसा का पर्व वो अवसर होता था जब वे अपनी संतानों को परमेश्वर द्वारा दी गई उस महान मुक्ति के बारे में बताए। फसह की आराधना में ऐसे प्रश्न रखे गए थे जो संतान अपने माता पिता से पूछे और तब उन्हें परमेश्वर के महान सामर्थ की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो। आज की रात पूरे वर्ष की अन्य रातों से भिन्न क्यों है? और माता पिता उस पूरी कहानी को दोहराएं जिसमें परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से मुक्ति दिलाई थी, परंतु अंत में उन्होंने फसा मनाना ही समाप्त कर दिया था क्योंकि उनके अनेक अन्य उत्सवों ने वो स्थान ले लिया था। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे अपनी संतानों को और उनकी संतान अपनी संतानों को और इस प्रकार पीढ़ी के बाद पीढ़ी परमेश्वर के कर्मों की गाथा सुनाती रहे, परंतु ये प्रथा समाप्त हो गई और माता पिता परमेश्वर के सत्य को अपनी संतानों तक पहुंचाने से चूक गए। ये बड़ी विध्वंसक बात है कि परमेश्वर के सामर्थी कार्य दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचाए जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि परमेश्वर के नाती पोते नहीं होते हैं। हर एक मनुष्य को परमेश्वर से अपना निजी संबंध बनाना है। परमेश्वर से मेरे माता पिता के संबंध मेरे लिए या परमेश्वर से मेरे अपने संबंध मेरी संतान के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संतान तक परमेश्वर के सामर्थ्य और कार्यों का ज्ञान पहुंचाएं, जिससे कि वे परमेश्वर से अपने निजी संबंध बनाए और जब हम इस संसार से कूच कर जाएं, तब वे परमेश्वर के साथ अपने निजी संबंधों में बने रहें तथा यही बात अपनी संतान को भी सिखाएं। हमने कठिन युग में दुख उठाए और परमेश्वर पर एक एक रोटी के लिए भरोसा रखा और उसकी आशीषों को पाया। आज हम अपनी संतान को उन कठिनाइयों और कष्टों से बचाकर रखना चाहते हैं परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उन कठिनाइयों ने ही हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया है। हमने भली भांति जान लिया है कि परमेश्वर सुधि लेता है। माता पिता होने के कारण ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी संतानों की नींव ऐसी डालें कि उन्हें परमेश्वर का, उसके कामों का, उसके सामर्थ का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो उनके ध्यान को, उनके लगाव को, उनकी उपासना को अपनी ओर करना चाहती हैं। यदि हम उनके मन में दृढ़ नेव नहीं डालते तो इसराइल के वंशजों के समान वे भी परमेश्वर को भूलकर संसार के देवी देवताओं की उपासना करने लगेंगे। इसराइल की संतान परमेश्वर से दूर हट गए थे और बाल, अशेरा तथा अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे थे। कैसी त्रासदी! इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और उसने आपको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर से शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई के लिए लगा रहता, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। न्यायियों 2:14-15। परमेश्वर ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि उसका हाथ उनकी भलाई के लिए उठेगा, परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर से छल किया तो उसका हाथ उनकी बुराई के लिए भी उठ जाएगा। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर अपना कहा पूरा करता है, परंतु कभी कभी मैं अप्रसन्न भी होता हूं, क्योंकि मेरा बुरा होता है। जैसा भी हो अच्छा ही है, क्योंकि इस प्रकार मैं परमेश्वर के पास लौटकर आ तो जाता हूं। हमें सदैव याद रखना है कि परमेश्वर अपने वचन की पूर्ति में विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने यदि आशीषों की प्रतिज्ञा दी है तो श्राप की भी प्रतिज्ञा दी है कि आज्ञाकारी आशीष पाएंगे और विद्रोही श्राप के भागी होंगे। पद 16 से न्यायियों के युग का आरंभ होता है। तो भी यहोवा उनके लिए प्रशासक ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों को भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन की नाई पराई देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, तब तब वो उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराना, जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराए देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। न्यायियों 2:16-19। ये न्यायियों की पुस्तक का संक्षिप्त सारांश है। परमेश्वर ने इस युग में इसराइल की अगुवाई के लिए न्यायियों का उदय किया। न्यायी उन्हें बैरियों से राहत दिलाते थे, परंतु वे तुरंत ही परमेश्वर से दूर होकर फिर से अधर्म में लिप्त हो जाते थे। वे मूर्ति पूजा में लीन हो जाते थे, जिसका परिणाम उनका फिर से शोषण किया जाना होता था। तब परमेश्वर फिर से एक न्यायी को खड़ा करता था। इस प्रकार न्यायियों की पुस्तक में इसी कहानी का बार बार दोहराया जाना विहित है। लोग कब सीखेंगे? आप इन कहानियों को सुनकर कहेंगे, इनके साथ समस्या क्या है? वे समझ क्यों नहीं पाते? वे इस विनाशकारी काम को बार बार करते थे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इसराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको ना सौंपा था। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। न्यायियों 2:20-23, 3:1 ये जातियां थी, पेलिस्ती, कनानी, हिती, यबूसी, परिजी, हवी तथा अमोरी, 6 राज्य।